मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 31 मई 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अंबिका जायसवाल अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, दिनेश पांडे पांडे डी झारखंड से और नंदिनी मौर्य आपका गांव है पट्टी जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मित्रों आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं तो कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा लेकिन कल शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ योजना के दो आर्टिकल्स एक हिंदी और एक इंग्लिश में और कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल एक हिंदी में और एक इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक हम लोग वीकली क्वेश्चन देते हैं जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है ताकि आप उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकें और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। आज के मुख्य विषय में मैं आप लोगों से चूंकि दो दिन के बाद यानी कि आज तो शुक्रवार है शनिवार एक दिन गैप करके रविवार को आपके प्री एग्जाम होने हैं तो उसके बारे में कुछ बातें करूंगा लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स कल के चाहे वो हमारे चैनल्स हो या रेडियो समाचार हो उसके जो केंद्र में जो समाचार था वो था कैबिनेट या कैबिनेट नहीं कह रहे चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार पद की शपथ ली है नरेंद्र मोदी जी ने और इसके बाद उनके साथ ही उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसे चैनल्स पर देखा भी हो। उसमें जो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री के अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री हैं। याद रखिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं सरकार शपथ लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए। फिर प्रधानमंत्री सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री सरकार बनाते हैं का क्या मतलब हुआ? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस किस को रखना है इसका चयन करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस मायने में तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं या सारा कुछ उनके अपने ही हाथ में है। नो डाउट उनके अपने हाथ में है लेकिन यहां डेमोक्रेसी कैसे काम करती है? डेमोक्रेसी इस तरीके से काम करती है कि जब प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद के बारे में निर्णय लेना होता है तो देखिए ऐसा नहीं होता कि वो जिसको चाहे उसको ले लें, जो पसंद है उसको ले लें। नो, उनको ढेर सारी बातें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। ढेर सारी बातें इस तरीके से कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो सके, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो सके। हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं और अलग अलग जाति और समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं, वो सब इसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सके या यूं कह लीजिए कि सबको प्रतिनिधित्व मिल सके। जो पार्टियां जिस तरीके से जीत करके आई हैं, चूंकि अलायंस गवर्नमेंट है, ये गठबंधन की सरकार है, तो उनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्हें राजनीतिक अपने हितों का भी ध्यान में रखना होता है। जो कैंडिडेट हैं उनके आप कह लीजिए कि अनुभवों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उनकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ता है। मतलब इतनी सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती हैं चयन करते समय कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए यहां कैसे डेमोक्रेसी अपना काम कर रही है। यही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब भी है लोगों का शासन। तो ये लोग ही प्रधानमंत्री जी को गाइड कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद बनाते समय आपको इन इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात। दूसरी बात, कल आपने चैनल्स पे देखा होगा कि कुछ कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए गए हैं और कुछ राज्य मंत्री बनाए गए हैं, राइट। और फिर एक शब्द सुना होगा आपने मंत्रिपरिषद। आइए मैं इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, इंग्लिश में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जितने भी मंत्री हैं, ये तीन स्तर के मैंने मंत्री बनाए बताए, कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ये सारे के सारे मंत्री को मिलाकर के हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हिंदी में अनुवाद है मंत्रिपरिषद। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इस मंत्रिपरिषद में तीन लेवल के मिनिस्टर हैं। नंबर वन जो सब हाईएस्ट लेवल है वो कैबिनेट रैंक है, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और सच पूछिए तो ये मंत्रिमंडल ही सही मायने में सरकार होती है। सरकार के बारे में जो भी निर्णय लेने होते हैं, या सरकार कह लीजिए जो भी निर्णय लेती है, वो कह लीजिए कि कैबिनेट निर्णय लेती है। समय अधिक नहीं है कि मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊं, लेकिन इतना बताना पर्याप्त होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास दो और स्तर बचते हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इस राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री यूं कह लीजिए कि स्तर पर तो लगभग लगभग एक से ही है, दोनों राज्य मंत्री हैं, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं उसका मतलब यह हुआ कि उन्हें एक मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और वो स्वतंत्र रूप से उसके प्रभारी होंगे, काम करेंगे, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा, वो अपनी मिनिस्ट्री के सर्वे सर्वा होंगे। अब है तीसरा स्तर राज्य मंत्रियों का, इसका मतलब है कि ये इनके ऊपर कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा ही होगा, यानी कि ये जो राज्य मंत्री हैं ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन काम करेंगे। ये बात अलग है कि कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें फिर एक पूरी तरह से विभाग का प्रभारी बना देता है कि ठीक है आप इसे देखिए, लेकिन वो जो रिपोर्ट करेंगे वो अपने कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। बस ये तीन जो स्तर हैं हमारे मंत्रिपरिषद के, ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, यानी कि चूंकि स्वतंत्र हैं तो डेफिनेटली उनका महत्व थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, और जिनके पास थोड़ा अनुभव हो जाता है उनको फिर स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है सामान्यतया। मित्रों आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है खासकर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। देखिए हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, और पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इस पर काम भी शुरू हो रहा है, और यह हमारे सच पूछिए तो चर्चा के केंद्र में भी रहता है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल काम कर रहे हैं, आपको पीपीपी मॉडल के बारे में जानकारी है ही, लेकिन सच पूछिए तो इसमें जितना डेवलप होना चाहिए था उतना अभी हुआ नहीं है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से जितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वह नहीं आया है। अभी तक तो सरकार खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रही थी, सरकार के पास उतना धन नहीं है तो इसने प्राइवेट लोगों को इनवाइट किया, लेकिन इसमें हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही है, उसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं, इसके लिए बकायदे केलकर समिति बनाई गई थी, केलकर समिति ने कुछ समय पहले अपनी रिपोर्ट दे दी, कुछ साल पहले दे दी है, उन रिपोर्ट्स की कुछ बहुत अच्छी बातें इस आर्टिकल में दी गई हैं। तो मैंने चर्चा आपसे सिर्फ इस उद्देश्य से की है कि जो केलकर समिति की रिपोर्ट है उन्हें थोड़ा सा आप नोट कर लें, बहुत अच्छी रिपोर्ट है और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर है, फिर उनका उन्होंने विश्लेषण भी किया है, तो ये जो आर्टिकल है आपके बहुत काम का आर्टिकल है। मित्रों आज के करंट कंटेंट में हिंदू में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था डी राजा का, भारत को सामाजिक न्याय चाहिए, ये प्रोवाइड किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सामाजिक न्याय की बात है, सोशल जस्टिस, और आपके मेंस का जो सेकेंड पेपर है उसमें बकायदे दिया हुआ है जस्टिस, सोशल जस्टिस, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि जो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ने के बाद आपका सोशल जस्टिस पर कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, एक दृष्टि मिलेगी। यहां मैं एक बात और भी कह दूं, जब कभी मैं किसी आर्टिकल की तारीफ करता हूं तो मेरे पास मेल आए हैं जिसमें कहते हैं कि सर वो तो अपने ही कम्युनिटी की बात लिखते हैं, वो तो अपने ही धर्म के बारे में लिखते हैं, वो अपनी ही पार्टी के बारे में लिखते हैं। यहां आपको इसके बारे में विचार नहीं करना है, जब तक आप अलग अलग लोगों के व्यू नहीं लेंगे तब तक आप कैसे अपना सही व्यू बना पाएंगे, आप बताइए। उनको अपनी बात कहने दीजिए, आप पढ़िए, उसके विरोध में दूसरों को कहने दीजिए, उसको भी पढ़िए, उसके दोनों के विरोध में तीसरों को कहने दीजिए, उसको पढ़िए, आप सभी व्यूज को पढ़िए, और इसके बाद उनका विश्लेषण कीजिए कि कौन सही कह रहा है, कौन कितना सही कह रहा है, कौन कितना गलत कह रहा है। कोई भी व्यक्ति न तो 100% सही कहता है और न 100% गलत कहता है। तो जब तक आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका मानसिक विकास नहीं हो सकता है, कम से कम सिविल सर्विस की दृष्टि से। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि किसी भी आर्टिकल को आप किसी पार्टी विशेष के लीडर या किसी धर्म वाले व्यक्ति, किसी जाति वाले व्यक्ति के दृष्टि से न देखें, उसे एक एकेडमिक आर्टिकल के रूप में देखें कि उनका अपना व्यू है, आप पढ़िए, आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने से मत बचिए, उसे पढ़िए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, बस दो दिनों के बाद ही आप प्री एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और सच पूछे तो अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सबका यह एग्जाम बेहतर तरीके से बने, आपको इसमें सफलता मिले। दोस्तों, यह हृदय से दी गई शुभकामनाएं हैं और डेफिनेटली इन शुभकामनाओं को जब हम स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो खटास होती है, जो रूखापन होता है, वो थोड़े से मीठेपन में बदल जाती है और उसमें थोड़ा सा गीलापन आ जाता है। तो बस मेरी शुभकामनाओं को आप इसी रूप में लें कि वो आपके अंदर की चिंताओं को, आपके अंदर के तनाव को, आपके अंदर के रूखेपन को थोड़ा सा कम करने वाला सिद्ध हो सके। दोस्तों, जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, याद रखिए दो तीन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वह होगा अपने संतुलन को बनाए रखना। जैसे जैसे दिन नजदीक आते चले जा रहे हैं, फिर घंटे नजदीक आते चले जाएंगे, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाएंगी। कोई बात नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिल की धड़कनें आपके अंदर असंतुलन पैदा करने वाली सिद्ध नहीं होनी चाहिए। आपको अपने मानसिक संतुलन को हर हालत में हर कीमत पर बनाए रखना होगा, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है प्री एग्जामिनेशन की, वो यही है कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप अपने आप को कितना संतुलित रख पाते हैं। पेपर कितना भी कठिन हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानकर चलिए कि अगर वो आपके लिए कठिन है तो दूसरों के लिए भी कठिन है, तो कट ऑफ मार्क्स गिर जाएंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबी योजना बना करके चलते हैं। जब तक आप अपना बेस्ट इसमें नहीं देंगे, और मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर होने जा रहे हैं, तो अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन करने का आधार तो यही हो सकता है ना कि नहीं, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी, फिर मैं एग्जाम में बैठा, वहां मेरी ये प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। आपको पता लग जाएंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, लेकिन वो सही मार्क्स तो तभी आ पाएंगे ना जब आप अपना बेस्ट देंगे। आप अगर असंतुलित होकर, निराश होकर के और पेपर छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे तो फिर आपका सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा, फिर आप अगले साल के लिए भी उतने सही तरीके से रणनीति नहीं बना पाएंगे। एक बात मैं और कहूंगा दोस्तों, कि एग्जाम देकर आने के बाद, उस दिन तो नहीं लेकिन नेक्स्ट डे, आप अपने एग्जामिनेशन के अनुभव को लिखिए, विस्तार के साथ लिखिए। एक दिन पूरा लगा दीजिए लिखने के लिए कि उस दिन मानसिक स्थिति क्या थी, क्यों संतुलन गड़बड़ हुआ, क्यों प्रश्न नहीं बने, कहां कहां आपकी तैयारी की कमजोरियां रही, कहां आपने मूर्खतापूर्ण गलतियां कर दी, यानी कि जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी वो भी गलतियां हो गई। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो आप लिख लीजिए, लेकिन ताजा ताजा लिखिए, इसे आप नेक्स्ट डे कर लीजिए, अदरवाइज चीजें धुंधली पड़ती चली जाएंगी और आप पाएंगे कि ये जो आपने अपना एक मूल्यांकन शीट बना ली है, ये आगे जब आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए कितनी अधिक काम की सिद्ध हो रही है। ये मेरा चूंकि अपना अनुभव है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। दोस्तों, अब आपके पास शुक्रवार की रात बची है, अगर आज आप मेरा ये ऑडियो सुनेंगे तो, और शनिवार की रात बची है, दो रातें आपके पास हैं। रविवार की सुबह आप एग्जाम देंगे और इसके बाद रविवार की रात आएगी, तो इन दो रातों में प्लीज नींद की कटौती बिल्कुल मत कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, क्योंकि इस नींद का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क की क्षमता से होता है और शारीरिक ऊर्जा से होती है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको संडे को पड़ेगी। इसके बाद संडे को फिर आप जैसा चाहें वैसा करने को स्वतंत्र होंगे, लेकिन दो दिनों में नींद की कटौती बिल्कुल न करें, अपने डाइट सिस्टम को बिल्कुल सही रखें और दिमाग के संतुलन को बनाए रखें। बेकार की चीजें सोचना बंद कर दें, छोड़ दें बिल्कुल। परीक्षा में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में भी मत सोचें, क्या तैयारी हुई है, कितनी तैयारी हुई है इसके बारे में भी सोचना बंद कर दें। बहुत ही सामान्य तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें और प्रसन्न मन से जाकर के एग्जाम दें, क्योंकि प्रसन्न मन अपने आप में ही अद्भुत मन होता है, इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा न करें। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सबको सफलताओं के लिए बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: के बी मीना, गीतांजलि नई दिल्ली से, सुयश तिर्की, धनुष, शालू पांडे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, नेहा साहू और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दो दिनों के लिए समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।